संत नाभादास जी द्वारा लिखी हुई भक्तों की जीवन गाथा भक्तमाल, जिन्हें सरल भाषा में आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे अपने प्रभु जी के परम भक्त अरविंद चौधरी जी।
राधे राधे। राधे राधे। भक्तमाल श्रृंखला में श्री रामानुजाचार्य जी के चरित्र का तृतीय भाग है। हरी सो जग वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सो पंथ, सदगुरु सो सज्जन नहीं, भक्तमाल सो ग्रंथ। श्री राधे श्याम सीताराम। भक्तमाल के सभी भक्तों संतों को प्रणाम। राधेश। तो रामानुजाचार्य जी जब मूर्छित हुए, महापूर्ण जी ने उन्हें उठाया, जैसे तैसे उनकी मूर्छा टूटी। मूर्छा टूटने के बाद उनको फिर भान हुआ कि मुझे अपने गुरुजी से मिलना है। गुरु रूप में मानते थे यमुनाचार्य जी को। पर इधर भगवान ने रंगनाथ ने एक अलग ही लीला की। भगवान रंगनाथ जी चाहते थे, उन्होंने यमुनाचार्य जी से कहा कि जब उन्हें पता चला कि रामानुजाचार्य जी वहाँ से चल दिए, तभी कि आपका समय पूरा हो चुका है और चलिए आप भगवत धाम आ जाइए और हमारा मन नहीं लगता है आपके बिना। ये भगवान रंगनाथ जी ने प्रकट होकर यमुनाचार्य जी से कहा। उनका नहीं, प्रभु वो जानते थे कि एक बार मैं तो रामानुजाचार्य जी से मिल लूँ। उन्होंने कहा प्रभु अभी कुछ दिन और हमें सेवा का मौका दो, आप आ ही जाएंगे, हम इतनी भी क्या जल्दी है। तो इन्होंने बोला कितना समय चाहिए, देखो हमारा मन नहीं लग रहा है। भगवान ने कहा कि ठीक है मैं आपको 8 दिन और देता हूँ, 8 दिन के बाद आप आ जाना। इन्हें लगा 8 दिन में तो रामानुजाचार्य जी आ ही जाएंगे, तो ठीक है, बोले प्रभु ठीक है बहुत बढ़िया है। पर भगवान की लीला कौन जानता है, 8 दिन उन्होंने रास्ते में ही करा दिए उनके पूरे। अभी 8वां दिन हो ही रहा है, उधर उनके प्राण निकल रहे हैं, उधर ये चल रहे हैं। इनके मिलन की वो जो उत्कंठा है वो बढ़ती जा रही है कि अब बस सभी दर्शन होंगे, अभी दर्शन होंगे और मैं तो उनसे गुरु दीक्षा ले लूँगा, गुरु मंत्र मुझे मिल जाएगा। ये पहुँचने को है, अदर इधर उनकी भगवान उनको लेने आ गए और उनको सीधे वैकुंठ धाम लेके चले गए। और जब ये वहाँ पहुँचे तो इनको पता चला, भीड़ समारोह वहाँ सब वो देखा कि क्या हुआ ऐसे ऐसे यमुना, तो ये इनकी हालत ख़राब हो गई सुन के कि मुझे दर्शन दिए बिना कैसे जा सकते हैं। इन्होंने कहा भी जोर से कि नहीं, मुझे दर्शन बिना दिए नहीं जा सकते, वो नहीं जा सकते, लेकिन वो तो हो चुका था। और ये लीला भगवान ने क्यों की कि ऐसे ही महापुरुष तो रामानुजाचार्य हैं और ऐसे ही यमुनाचार्य जी हैं। दोनों इतने बड़े महापुरुष थे कि अगर दोनों का मिलन करवा दिया भगवान ने तो ये था कि ये सब जीवों का उद्धार कर देंगे। दोनों अगर मिल जाएं और भक्ति प्रचार में लग जाएं तो ये सबका उद्धार कर देंगे, इतनी क्षमता है इनकी। तो बोले दोनों शक्तियों को मिलने नहीं देना चाहिए, तो जीवों का खाम खा उद्धार हो जाएगा। इसलिए जब ये उनके सामने देखा, उनका शव देखा, तो यमुनाचार्य जी की 3 उंगलियाँ मुड़ी हुई थी, 3 उंगली मुड़ी हुई थी। सब ने देखा कि भाई ये क्या है, ये पहचान गए कि ये मुझे कुछ 3 बातें बताना चाहते थे, इसलिए मुड़ी हुई है। ये सामने खड़े हुए उनके शव के और इन्होंने यमुनाचार्य जी के चरणों की तरफ खड़ा होकर कहा कि मैं वैष्णव धर्म का पूरी तरह प्रचार करूंगा, तन मन धन जो सब कुछ अपने सर्वस्व से मैं वैष्णव धर्म का प्रचार करूंगा। तो पहली उंगली सीधी हो गई। फिर इन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मसूत्र और विष्णु सहस्र नाम का भाष्य करूंगा, दूसरी उंगली भी सीधी हो गई। फिर तीसरा इन्होंने कहा कि मैं द्रविड़ के जो संबंध हैं और विष्णु महापुराण है तो विष्णु पुराण और द्रविड़ संबंधों को सब वैष्णवों को पढ़ाऊंगा, तीसरी उंगली भी सीधी हो गई। सब ने वहाँ जय जयकार करी कि तो दिव्य पुरुष आ गए हैं, दिव्य पुरुष हैं, सबको इनकी दिव्यता का पता चल गया। वहाँ प्रणाम किया, प्रणाम करके जो भी वहाँ का जो कार्य था वो सब निपटाने के बाद ये वहाँ से आगे रंगनाथ भगवान के दर्शन नहीं किए। ये गुस्से में थे कि हम ऐसे भगवान के दर्शन नहीं करेंगे जिनसे उन्होंने हमारे गुरु ही छीन लिए, हम गुरु बनाना चाह रहे थे। फिर इन्होंने जो गुरु दीक्षा ली बाद में, वो यमुनाचार्य जी के 5 अलग अलग शिष्यों से 5 अलग अलग शिक्षाएँ इन्होंने ली, किसी से मंत्र लिए तो किसी से अपना दीक्षा प्रारंभ, तो ऐसे करके किसी माला कंठी ली है, तो इन्होंने 5 दीक्षाएं जो हैं अलग अलग से ली हैं। अभी एक और घटना इनके साथ हुई कि जब ये वहाँ से वापस आ गए तो इनकी जो पत्नी थी उनको वैष्णव की सेवा करने का वैसा उतना ज्ञान नहीं था कि वैष्णव सेवा कैसी होती है, तो वो भक्त वैष्णव में भी ये अंतर मानती थी, जातिगत अंतर, कि इनकी जाति अलग है तो ये मतलब नीच जाति के हैं तो ये भक्त और वैष्णव भी हैं भले ही, तो इनको मतलब उतना भाव नहीं देना चाहिए। एक दिन श्री कांचीपुरी स्वामी जी को रामानुजाचार्य जी ने भोजन के लिए अपने यहाँ पे आमंत्रित किया, भोजन के लिए वो आ गए। ये रामानुजाचार्य जी को बाहर जाना पड़ गया किसी काम से, ये बाहर गए तो इनकी पत्नी ने उनको भोजन तो करा दिया, भोजन करा के जब तक ये आए भोजन के लिए, और इन्हें निकलना भी था, कांचीपुरी जी निकल गए भोजन करके, तो इन्होंने इनकी पत्नी ने जो उनकी भोजन झूठन थी वो भी, जो बचा हुआ भोजन था वो भी सब बाहर फेंक दी पत्तले वत्तले, और घर में वापस से वो नहाई धोई और पोछा वोछा लगाई। जब तक ये पहुँचे ये बोले कि जो भी भोजन भोजन है दे दो, मुझे जल्दी निकलना है। इन्होंने कहा अरे कहाँ ऐसे भोजन दे दें आपको, बोला कुछ तो बचा होगा ना भाई, और उनका थोड़ा प्रसाद दे दो हमें, स्वामी जी आए थे। वो बोलने लगी स्वामी जी का प्रसाद आपको दे दूँगा, कैसी बात कर रहे हैं आप, उनकी जाति देखो हमारी जाति देखो, हम उच्च कुल के ब्राह्मण हैं और ये वो। तो इनके मन में बड़ा ही मतलब अपनी पत्नी के ये वचन सुन करके बड़ी दुर्भावना हुई कि ये कैसे सोचती हैं, वैष्णव के बारे में भी ये जातिगत इनके विचार हैं। तो खैर वो बाहर निकल गए। एक दिन की एक और घटना हुई, जो महापूर्ण जी थे उनकी पत्नी और ये जल भरने के लिए कुएं पे गए हुए थे, तो कुएं पे महापूर्ण जी की पत्नी का घड़ा जैसे ही छलका तो इनके घड़े में आके वो थोड़ा जल गिर गया, जल गिर गया तो ये आग बबूला हो गई, और उनको न जाने क्या क्या अपशब्द इन्होंने कहे, और ऐसे अपशब्द कहे कि वो रोने लगी, और उन्होंने जा करके महापूर्ण जी को सारी बातें बता दी। महापूर्ण जी ने कहा कि ठीक है, और ये भगवान वरदराज की सेवा तो हमसे बहुत हो गई है, भगवान रंगनाथ हमें याद कर रहे हैं इसलिए ये हमारे साथ घटना घटी है, चलो हम यहाँ से निकलते हैं। वो अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से निकल गई। ये बात रामानुजाचार्य जी को पता चली कि मेरी पत्नी के व्यवहार के कारण महापूर्ण जी यहाँ से जा रहे हैं, वो तो उनके बड़े हितेशी और बड़ा प्रेम था दोनों में, इनको बड़ा दुख हुआ। एक दिन एक और घटना घट गई, एक ब्राह्मण आए और ब्राह्मण ने आके कुछ भिक्षा चाही घर में कि भोजन जो भी हो जाए, भूख लगी है बहुत, हमें कुछ भोजन दे दीजिए। अच्छा घर में भोजन सब व्यवस्था थी, इन्होंने मना कर दिया उसको, यहाँ घर में कुछ नहीं है निकलो तुम, वो भूखे ही निकल गए, रास्ते में मिल गई ये निकल रहे थे तो ब्राह्मण से पूछा मैं किधर जा रहे हो, आओ भोजन का समय हो रहा भोजन करना, बोला हम तो भोजन करने मांगा था हमने आपकी पत्नी से, मना कर दिया ऐसे ऐसे। इन्हें बड़ा दुख हुआ कि भोजन से मना कर दिया, ये बोले अच्छा आप रुको, बाहर ही रुकाया इनको, ये घर में प्रवेश किया इन्होंने और देखा भोजन है कि नहीं, देखा भोजन की तो कई सारी वस्तुएँ भोजन में बनी हुई हैं, तो ये कुछ नहीं बोले, ये वापस गए ब्राह्मण के पास, उसको बोला आओ अभी तुम्हें देखा था, उसने बोला नहीं ध्यान से मेरी तरफ तो आंख उठा के भी नहीं देखा, उन्होंने बस मना कर दिया मुझे देख के ही जाओ भोजन वोजन कुछ नहीं है, बोला अच्छा। तो उन्होंने कुछ फ्रूट्स कुछ फल उनको दिए, टोकरी वोकरी बना के पूरी टोकरी बाहर से खरीद के ये दिए कि ये फल लेके जाओ और मेरी पत्नी को जाके आप ये बोलो कि जी आपके मायके से आया हूँ मैं और वहाँ पर आपके पिताजी बीमार हैं, आपको बुलाया है, बस ये जाके बोल दो। बोला जी ठीक है, गए वो, ये कहते कि आपके गांव से आया हूँ और आपके पिताजी बड़े बीमार हैं, ये फल भेजे उन्होंने लिए, इतना स्वागत किया ब्राह्मण का उन्होंने, बहुत स्वागत, उनके लिए सारे वो भोजन की सामग्री रख दी, स्नान करवाया, लो जी आप, और बस ठीक है तैयार हो गए और बस मैं भी निकलती हूँ। और वो जब आए रामानुजाचार्य जी आए, इनको बताया मेरे पिताजी ऐसे ऐसे बीमार हैं, बोले ठीक है आप निकलो, मैं तो जा नहीं पाऊँगा, मेरे तो टाइम नहीं है, और तुम निकलो। बोले जी ठीक है बस मैं तो, वो निकल गई पंडित जी अपना रास्ते लिया पंडित जी ने, और वो निकल गई अपने घर के लिए, अपने घर के लिए निकली, इन्होंने इधर संकल्प करके सीधे संन्यास ले लिया। ये जब गए थे संन्यास लेने तब भी यमुनाचार्य जी से संन्यास लेते, पर इन्होंने यहाँ देख के ये उचित अवसर कि अब तो गृहस्थ में रहना ही नहीं है, इन्होंने पूरी तरह संन्यास ले लिया। संन्यास लिया, संन्यास लेते ही अपना वरदराज भगवान की सेवा में उपस्थित हो गए, वरदराज भगवान की सेवा करने लगे। इधर यमुनाचार्य जी के जाने के बाद वहाँ पर भी रंगनाथ की सेवा में लोगों को फिर वही कमी महसूस होने लगी कि रंगनाथ जी की सेवा के जो उच्च अधिकारी हैं वो तो रामानुजाचार्य जी ही हैं, और ये यमुनाचार्य जी भी जानते थे और वो उन्होंने बुलाया भी था, लेकिन वो यहाँ आना ही नहीं चाह रहे थे, कैसे उनको यहाँ लाया जाए। वो बोले वो स्वयं तो आएंगे नहीं क्योंकि यमुनाचार्य जी नहीं है, अगर वरद भगवान स्वयं प्रकट होकर उनको आज्ञा दें तो वो आ सकते हैं, और वरद भगवान प्रकट होकर आज्ञा कैसे दें। वहाँ पे सारे लोगों ने ये बात विचार विमर्श किया और पता चला कि जो यमुनाचार्य जी के पुत्र हैं वो संगीत विशारद हैं, बड़ा सुंदर वो गायन भी करते हैं और बड़ा अच्छा मतलब संगीत वादन भी करते हैं, और वरदराज भगवान जो हैं वो संगीत सुनते हैं बहुत, वहाँ पे पद गाए जाते हैं भगवान के सामने, बहुत पद गाए जाते हैं, तो बड़े प्रेम से सुनते भी हैं। तो क्यों ना इनको वहाँ पे वो सुनाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि हमें इनको दे दो, आप भेज दो हमारे साथ। तो एक सहमति से सबने कहा कि हाँ ये बहुत अच्छा रहेगा और शायद भगवान प्रसन्न हो जाए तो हमें दे सकते हैं इनको, रामानुजाचार्य जी को। वैसा ही हुआ, वो आए, उन्होंने आके उनकी कई दिन तक वरदराज भगवान की बड़ी अच्छी अच्छी स्तुतियाँ की गा के वादन से, तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। उनको स्वप्नादेश हुआ क्या चाहिए, उन्होंने मांगा कि हमें रामानुजाचार्य जी को हमारे साथ भेज दीजिए। वरदराज भगवान ने प्रकट होकर रामानुजाचार्य जी से कहा आप इनके साथ चला जाओ, रंग भगवान की सेवा में उपस्थित हो और ये हमारी आज्ञा है। अब भगवान की आज्ञा तो टाल नहीं सकते थे, तो ये फिर उनके साथ में ही चले आए। चले आए, दीक्षित हो ही चुके थे। इधर जो यादव प्रकाश जी थे, यादव प्रकाश जी को तो इनका इनकी दिव्यता पता चल चुकी थी, अब ये सन्यासी भी हो चुके, तो जो यादव प्रकाश जी इनके यहाँ पे ये वेद पाठ किया करते थे वो भी इनके शिष्य बन गए। पहले इनके गुरु थे, जब ये सन्यासी हुए तो इन्हीं के चरणों में उन्हें वो दीक्षित हुए और वो इन्हीं के शिष्य भी बने। और फिर ये चले गए रंगनाथ जी के यहाँ पे। रंगनाथ जी के यहाँ पे रंगनाथ भगवान ये बताते हैं स्वयं प्रकट होकर अपनी सातवीं ड्योढ़ी पे इन्हें लेने के लिए स्वयं आए भगवान नारायण। भगवान नारायण स्वयं इनको लेने के लिए आए और इनसे मिले, गले मिले भगवान, और फिर इनको वहाँ पे सेवा भार सब कुछ संभाला इन्होंने, इनको दे दिया गया। अच्छा, जैसे ये वहाँ के सेवा अधिकारी हुए, सबसे पहले इन्होंने सेवा में कुछ चेंजेस किए, कुछ बदलाव कर दिए। वो बदलाव वहाँ के जो लोग थे उनको समझ नहीं आए और उन्होंने फिर से एक षड्यंत्र रचा इनको मारने का। अब रामानंदाचार्य जी के प्राण लेने का षड्यंत्र रचा गया अंदर ही अंदर। तो ये कथा हम अगले पार्ट में करते हैं। राधे राधे।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।